प्रिय श्रोताओं, ईरान इराक युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ जो रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया था और इन हथियारों से लैस करने में अमेरिकी सरकार ने जो भूमिका निभाई थी, उसके बारे में विशेष चर्चा के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं मोहम्मद मेहदी और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
उनतीस जून का दिन ईरानी जनता और मानवता के इतिहास का एक कटु दिन है। इसे रासायनिक व जैविक हथियारों से मुकाबले के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का नाम दिया गया है। सन 1987 में 28 और 29 जून को इराक की बासी सरकार के युद्धक विमानों ने ईरान के पश्चिम में स्थित सरदश्त नगर के 4 घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर बमबारी की थी। इस बड़े हमले के तुरंत बाद दसियों लोग हताहत और हज़ारों लोग घायल हो गए थे। जो लोग इन हमलों के कुछ ही देर बाद हताहत हो गए थे, उन्हें कम समय तक पीड़ाओं को सहन करना पड़ा, किंतु जो लोग रासायनिक हथियारों से प्रभावित हुए, उन्हें अधिक समय तक कठिनाइयों व पीड़ाओं का सामना करना पड़ा और आज भी वे कर रहे हैं। इराक की बासी सरकार के युद्धक विमानों ने सरदश्त नगर पर जो रासायनिक बमबारी की थी, उसमें नगर के 8,000 से अधिक लोग इन हमलों से प्रभावित हुए। जो लोग इन हमलों से प्रभावित हुए थे, उनमें ध्यान योग्य संख्या बच्चों और महिलाओं की थी, जिन्हें पूरी ज़िंदगी रासायनिक हथियारों से होने वाली पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है।
सद्दाम की सरकार ने 8 वर्षीय ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान के खिलाफ पहली बार रासायनिक हथियारों का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि ईरान के सरदश्त नगर पर रासायनिक बमबारी से पहले सद्दाम ने बारंबार ईरानी सैनिकों के मोर्चों पर बमबारी की थी। उसकी वजह यह थी कि इराकी सैनिक रक्षात्मक स्थिति में थे और वे पीछे हटने पर बाध्य हो गए थे और ईरानी सैनिकों की पंक्ति को तोड़ने के लिए बारंबार रासायनिक हमला किया था। 8 वर्षीय ईरान इराक युद्ध के दौरान इराक द्वारा ईरान पर किए गए रासायनिक हमलों के कारण 1,00,000 से अधिक लोग शहीद व घायल हो गए। रासायनिक हथियारों से जो लोग प्रभावित हुए थे, 3 दशकों का समय बीत जाने के बावजूद वे अब भी इन हथियारों की पीड़ा झेल रहे हैं। इनमें से बहुत से प्रभावित लोग पिछले वर्षों के दौरान शहीद हो चुके हैं। ऐसा कोई महीना नहीं गुजरता जिस दिन रासायनिक हथियारों से शहीद होने वाले किसी व्यक्ति की घोषणा न की जाए।
सद्दाम ने ईरान के खिलाफ जो बारंबार रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया था, उसके लिए मानवाधिकारों की रक्षा का दम भरने वाले अमेरिका और यूरोपीय देशों की नीतियां जिम्मेदार हैं। ये देश रासायनिक हथियारों के प्रयोग का आरोप सीरियाई सेना पर लगाते हैं और उस पर मिसाइलों से हमले करते हैं, जबकि अभी तक उसका दावा सिद्ध नहीं हो सका है। 8 वर्षीय ईरान इराक युद्ध के दौरान अमेरिका और पश्चिमी देशों ने न केवल छोटी सी आपत्ति सद्दाम के खिलाफ की, बल्कि सद्दाम की भर्त्सना में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव भी पारित नहीं होने दिया।
ईरान इराक युद्ध में अमेरिका और उसके यूरोपीय घटकों का पूरा प्रयास सद्दाम को पराजित होने से रोकना था और इन देशों ने सद्दाम को रासायनिक हथियारों की प्राप्ति में सहायता करने में किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं लिया। इन देशों की यही सहायता इस बात का कारण बनी कि सद्दाम ने किसी प्रकार की चिंता व भय के बिना ईरान के खिलाफ बारंबार रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। सरदश्त और हलबचे नगरों के विभिन्न क्षेत्रों पर बारंबार सद्दाम के रासायनिक हमलों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। सद्दाम ने हलबचे नगर पर जो रासायनिक हमला किया था, केवल उसमें 5,000 से अधिक लोग मारे गए थे। सद्दाम के हलबचे नगर पर रासायनिक हमले से 9 महीने पहले राष्ट्रसंघ में एक प्रस्ताव पारित होने वाला था, जिसे अमेरिका ने वीटो करके पारित होने से रोक दिया था।
इस प्रस्ताव में रासायनिक हथियारों के प्रयोग में सद्दाम की भर्त्सना की गई थी। इसी अमेरिकी सरकार ने, जिसने वीटो करके सद्दाम के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने से रोक दिया था, सन 2003 में इराक पर हमले का औचित्य दर्शाने के लिए कहा था, कि सद्दाम के पास रासायनिक और सामूहिक विनाश के हथियार हैं। सद्दाम की सरकार का पतन होने से 6 महीने पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पर हमले का औचित्य दर्शाते हुए 7 सितंबर सन 2002 को अपने संबोधन के एक भाग में कहा था कि सद्दाम ने ईरान के खिलाफ और स्वयं इराक के 40 से अधिक गांवों के विरुद्ध रासायनिक हमलों का आदेश दिया था। इन हमलों में 20,000 से अधिक लोग हताहत व घायल हुए थे। इस्लामी गणतंत्र ईरान के खिलाफ सद्दाम द्वारा रासायनिक हथियारों का प्रयोग ऐसा विषय नहीं था जिसकी सूचना अमरीकी सरकार को अभी हुई हो। इसके अलावा जब ईरान इराक युद्ध हो रहा था तब कभी भी व्यावहारिक रूप से अमरीकी सरकार ने सद्दाम द्वारा रासायनिक हथियारों के प्रयोग का कोई विरोध नहीं किया। समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स ने 23 फरवरी सन 1983 को अमरीका की सैनिक संस्था DIA की वर्ष 1980 की एक रिपोर्ट की ओर संकेत किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार बगदाद ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता से पहले भी रासायनिक हथियारों की प्राप्ति की चेष्टा में था।
वर्ष 1982 में इस्लामी गणतंत्र ईरान की सशस्त्र सेना और स्वयंसेवी बलों के जवानों ने इराकी सेना को करारा आघात लगाया और महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक नगर खुर्रम शहर को इराकी सेना के कब्जे से स्वतंत्र करा लिया। ईरानी सेना की इस साहसिक कार्रवाई से पूरा समीकरण ईरान के हित में हो गया। इस परिवर्तन से सद्दाम के पूर्वी और पश्चिमी समर्थक इराक की बासी सरकार की हार से चिंतित हो गए। समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट ने 4 सितंबर 2013 को एक रिपोर्ट में लिखा कि रेगन सरकार वर्ष 1983 में जब ये जान गई थी कि ईरान की सशस्त्र सेना इराक के बसरा नगर पर नियंत्रण करना चाहती है तो उसने ईरानी सेना को आगे बढ़ने से रोकने का निर्णय किया। इस निर्णय को 26 नवंबर 1983 को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की कार्यसूची में स्पष्ट किया गया है और कहा गया है कि हर जरूरी व कानूनी कार्रवाई के माध्यम से ईरान के मुकाबले में इराक की पराजय को रोका जाए।
सन 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर हमला करने से 3 महीने पहले वाशिंगटन पोस्ट ने 30 सितंबर सन 2002 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जो इस बात की सूचक थी कि रीगन और सीनियर बुश इराक की सद्दाम सरकार के हाथों रासायनिक व जैविक हथियारों की बिक्री से सहमत थे। अमेरिका और उसके घटकों की ओर से सद्दाम की सहायता ऐसी स्थिति में जारी थी कि जब सुरक्षा परिषद के तत्कालीन प्रमुख कई बार गैर अनिवार्य प्रस्ताव पारित करके सद्दाम द्वारा रासायनिक हथियारों के प्रयोग की भर्त्सना कर चुके थे, परंतु चूंकि ये परिषद बड़ी शक्तियों विशेषकर अमेरिका के प्रभाव में है इसलिए वो कभी भी अनिवार्य प्रस्ताव पारित करके रासायनिक हथियारों के प्रयोग के कारण सद्दाम की भर्त्सना न कर सके। सद्दाम द्वारा ईरान के सरदश्त नगर पर रासायनिक हमले से पहले 21 मार्च सन 1986 को सुरक्षा परिषद के अधिकांश सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव तैयार किया था और उसमें इराक द्वारा बारंबार रासायनिक हथियारों के प्रयोग की भर्त्सना की गई थी। उस विज्ञप्ति को पारित कराने के लिए सुरक्षा परिषद में पेश किया गया था, परंतु अमरीका ने उसके खिलाफ वोट दिया जिसके कारण वो विज्ञप्ति पारित न हो सकी। सुरक्षा परिषद के 10 अन्य सदस्य देशों ने इस विज्ञप्ति के पक्ष में मत दिया जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क जैसे देशों ने वोटिंग में भाग ही नहीं लिया।
रासायनिक हथियारों के बारंबार प्रयोग किए जाने के बावजूद अमेरिका ने सद्दाम की सहायता की। वर्ष 2003 में इराक पर हमले का औचित्य दर्शाने के लिए अमेरिका द्वारा इन्हीं हथियारों को बहाना बनाना मानवाधिकार की रक्षा के संबंध में अमेरिका के दोहरे मापदंड का सूचक है और अमेरिका एवं उसके घटकों को उनकी दोहरी नीतियों व झूठों के स्पष्ट हो जाने की कोई चिंता नहीं है। वर्ष 1991 में इराक द्वारा कुवैत पर हमला करने के बाद अमेरिकी सरकार सद्दाम द्वारा रासायनिक हथियारों के प्रयोग के विषय को भूल गई। 11 सितंबर वर्ष 2001 की घटना के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उपराष्ट्रपति डिक चेनी और रक्षा मंत्री रम्सफील्ड सहित बहुत से अमेरिकी अधिकारियों व राजनेताओं ने इराक पर हमले का समर्थन किया और इसके लिए उन्होंने ये बहाना किया कि इराक के पास सामूहिक विनाश के रासायनिक हथियार मौजूद हैं।
इसी प्रकार इन अमरीकी राजनेताओं ने इराक पर हमले के औचित्य में यह भी कहा था कि सद्दाम के अलकायदा से संबंध है। इराक पर हमले के समर्थक राजनेताओं ने 11 सितंबर की घटना के आरंभ में ही इराक पर हमले का फैसला कर लिया था। इराक पर हमला करने से डेढ़ वर्ष पहले तक अमरीका और ब्रिटेन कहते थे कि गुप्तचर रिपोर्ट इस बात की सूचक हैं कि इराक के पास सामूहिक विनाश के रासायनिक हथियार मौजूद हैं, जबकि उनका ये दावा बिल्कुल ही झूठा और निराधार था।